ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 नारायणं नमस्कृत्यं
नारायणं
हरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो नलिननेत्राय वेणोवाद्य विनोदिने राधरसुधापान शालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वम् कृष्णप्रियवरीयसि प्रेमभक्ति प्रदे देवी राधिका त्वं नमोस्तुते। पिछले हफ्ते श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों पर हमने चर्चा की, जहां पर भगवान भक्ति प्राप्त करने वाले या भगवत भावना में स्थित व्यक्ति के गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो इस तीसरे अध्याय में पहले ही श्लोक में अर्जुन भगवान को एक प्रश्न पूछता है जो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग। कि भारतवर्ष में हम कहां से इतने देखते हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और भगवत गीता हमें मालूम नहीं कहते हैं, ऐसे लोगों का अगर आप पूछते हैं कि भगवत गीता क्या बताती है तो उनका एक ही उत्तर रहता है, भगवत गीता बताती है अपना कर्म करो, कर्मयोगी बनो। भगवत गीता केवल कर्मयोग के लिए नहीं बनाती या बताती, बल्कि भगवत गीता हमें बताती है कि कौन सा कर्मयोग हमें करना है और कर्मयोग किसे कहा जाता है। केवल गधे जैसा कार्य करना कर्मयोग नहीं है, बल्कि जिस कर्म के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं उस कर्म में रत रहने वाले व्यक्ति को कर्मयोगी कहा जाता है। तो इस अध्याय के इस पहले श्लोक में बताते हैं अर्जुन उवाच जायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे आम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ कहते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्कृति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूले या भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम का जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग तथा कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसी मे तदेकं वर निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। अर्जुन पूछता है आगे, आपके अनेक अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो गुरु के पास जाने के पश्चात क्या प्रश्न होनी चाहिए, क्या पूछना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के बारे में, वो यहाँ अर्जुन भगवान को पूछ रहा है। कई बार होता ही है कि हम जाते हैं आध्यात्मिक गुरु के पास और जाके कुछ उटपटान बातें पूछते रहते हैं। जैसे एक बार हम कुंभ मेला गए थे और वहां पे बहुत सारे हमने ऐसे एग्जीबिशंस लगाए थे डायरोमास, और अंत में एक पंडाल था जिसमें लिखा गया था कि जिज्ञासा पूर्ति या प्रश्नोत्तर मंच, कि जहाँ पे आप बैठकर वहाँ के जो साधु हैं या भक्त है उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछे। तो एक ब्रह्मचारी के पास एक कपल आया और पूछा कि हमारे बेटे को बच्चे नहीं हो रहे, क्या किया जाए महाराज। अभी ये सब बताने के लिए वो बेचारा ब्रह्मचारी होके बैठा है, क्या कहाँ पे जाके क्या पूछना है ये लोगों को मालूम ही नहीं। अरे जिसने संसार छोड़ छाड़ दिया है उस आदमी के पास जाके आप सांसारिक बातें पूछोगे, महाराज मेरा हाथ देखो बताओ क्या होने वाला है। अरे वही होगा जो लेके आए हो, उससे कुछ बदल होने वाला है। उससे जाके पूछो कि जो मैं भुगत रहा हूं उससे कैसे छूटू मैं। इस दुनिया में कोई व्यक्ति है जो दुखी नहीं है, कोई है? हर एक व्यक्ति दुखी है। जैसे पानी में कोई कूदा है और बोलता है मैं गीला नहीं हूं, हो सकता है? तो जो भी इस संसार में है सब दुखी है। अब देखो कोई नया व्यक्ति आपको मिला, कुछ समय तुम उसके साथ बैठो, अच्छी बातें करता रहेगा और लास्ट में फिर अपना दुख बताना चालू करेगा, यह ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, ये है वो है। सुख की बातें ज्यादा देर मनुष्य कर ही नहीं सकता। अब देखो ट्राई करो, जीवन में आपने कभी किसी से बातें करते करते देखा होगा कि लास्ट में अपना रोना धोना चालू कर लेते हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम ऐसी जगह पर है कि जहां पे केवल दुखी है, दूसरा कुछ है ही नहीं। पानी में रहोगे तो गीले ही रहोगे, सूखे तो नहीं ज्यादा देर रख सकते। जितना शरीर का भाग पानी से बाहर रहता है उतना ही सूखा रहता है, जैसे डुबाओगे तो फिर दो गीला हो जाएगा। वैसे ही संसार के, जब तक भगवान और भक्तों के संग में रहते हो उतना सूखा जो रहता है, जैसे संग से बाहर निकलोगे फिर डुबकी मारोगे तो फिर क्या होगा? तो फिर जाके पूछो कि कैसे छूट सकता हूं इससे। और हमें प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन एक कनिष्ठ शिष्य के नाते, भगवान का एक कनिष्ठ शिष्य था, और इसलिए भगवान से पूछा कि भगवान आपने तो बहुत सारी बातें मुझे बताई लेकिन आप ये बताएं कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। एक बार बोलते हो कर्म करो, दूसरी बार बोलते हो कर्म मत करो, बोलते बुद्धि योग करो, ये है क्या? कुछ एक तो बताओ बाबा, मेरे तो ब्रह्मा जैसे चार सिर है नहीं कि मैं चार बार विचार कर सकूं, अकेला ही हूं, एक ही काम करता है, एक चीज मुझे आप बताइए। तो भगवान उसे कहते कि श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् विरानिष्ठा पुरा प्रोक्त मयानक ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। वेदों में ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग और कर्मकांड ऐसे तीन मार्ग भेद है, क्योंकि तीन गुणों का प्राधान्य होने के कारण तीन गुणों में स्थित व्यक्तियों की धारणा के अनुसार उनके लिए मार्ग बनाए गए। तो भगवत भक्ति के भी दो मार्ग बताते भगवान यहाँ पर, एक है ज्ञान के द्वारा और दूसरा है भक्तिमय सेवा के द्वारा। न कर्मणा आरंभ नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासाद एव सिद्धिम समाधि गच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये बहुत ही विचार करने की बात है कि किस चीज को हम त्याग सकते हैं, किस चीज को हम त्याग सकते हैं, किसको छोड़ सकते हैं? अरे जो आपकी हो उसे छोड़ोगे ना, जैसे इनके जेब में पैसा है, मैं बोलता चलो मैंने आज इनको 1000 रियाल दान कर दिया, जो मेरा है ही नहीं तो मैं दान क्या करूंगा, कर सकता हूँ? तो दुनिया में कर्म करना छोड़ना है, कैसे छोड़ पाओगे? है कुछ आपका, कुछ साथ में लेके आए हो? खाली बदन आते हैं, खाली बदन चले जाते हैं, क्या लेके आते हैं, तो क्या छोड़ेंगे? है कोई हमारा, है कुछ? ये शरीर भी हमारा नहीं है, है हमारा? बचपन में माता पिता कहते हैं ये बच्चा मेरा है, जवानी में बीवी कहती है पति मेरा है, बच्चे हो जाते बोलते ये बाप हमारा है, और मृत्यु के समय मृत्यु बोलता है ये मेरा है। तो फिर ये हमारा है, इसको तो छोड़ सकते हैं हम? पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे कैसे? इसलिए हम बोलते हैं कि भाई इस भौतिक जगत में बिना कर्म किए हुए कोई भी नहीं रह सकता, चाहे सन्यासी व्यक्ति क्यों ना हो जिसने सारे भौतिक कार्य छोड़ दिए हो, उसे भी मधुकरी करने के लिए या भिक्षा मांगने के लिए किसी के घर पे जाना पड़ता है, किसी द्वार पे जाना पड़ता है, वो चलना भी कर्म हो जाता है ना, फिर किसका त्याग करोगे? फिर कर सकोगे किसी चीज का? बोलते हैं भगवान अर्जुन को कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म को कार्यते ये वशत कर्म सर्व प्रकृतेर जनेर गुणै। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्मे इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमुडात्मा मिथ्याचार सुच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो ढोंग करते हैं वैराग्य का, लेकिन मन में तो धन की और स्त्री की बहुत अभिलाषा रहती है। ऐसे एक सन्यासी से हमारा पाला पड़ा था, हाँ बोला उनका सेक्रेटरी के बारे में, महाराज जी धन को स्पर्श नहीं करते, आप कुछ मत दो। अच्छा वो देखा लोग और उनके दर्शन के लिए 10,000 फी थी। महाराज धन की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन महाराज का दर्शन करना है तो 10,000 रुपए का रिसिप्ट फाड़ना है आपको, और वो भी आपको 10 फीट से दर्शन होगा, नजदीक भी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि महाराज ऐसे वालों से थोड़ा दूरी रहते हैं, और ऐसे महाराज को देखने के लिए लाइन लगी होती 10,000 का रिसिप्ट फाड़े। बोले क्यों नहीं, महाराज को पैसे की एलर्जी है। बोले कैसे? बोले एक बार एक व्यक्ति ने महाराज की परीक्षा की कि महाराज के बिस्तर के नीचे बोले पैसे डाल के रखे, महाराज सो नहीं पाए, पूरे शरीर में उनकी आग हो रही थी। अच्छा, तो फिर दर्शन के लिए जो पैसा इकट्ठा करते उसका क्या करते? ये बोले महाराज ने रिजर्व बैंक में खाता खोला। हाथ नहीं लगाते लेकिन बिना हाथ लगाए खाता ऑपरेट कर लेते। और ऐसे ढोंगियों के दर्शन करने के लोग पैसा खर्चा करके जाते। एक ऐसे ही था हैदराबाद में, ये आंध्रा में, कल्कि भगवान करके अभी भी है। पहले तो अकेला था, अभी उसकी बीवी के साथ है, अभी भगवती अम्मा। उनका दर्शन करने के लिए 10-10, 20-20 हजार रुपए देके जाते दर्शन करने के लिए। वो बोलेंगे नहीं कुछ नहीं, दोनों भी देख के आप हंस करेंगे बूढ़ा बूढ़ी हो। और वो उसके लिए लाखों रुपए पैसा खर्च करते लोग। बाकी सिद्धांत सुरेश ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, वो कहा करते थे कि कलयुग में एक प्रबल संप्रदाय है, वंचित वंचक संप्रदाय, यानी फंसने वाले और फंसाने वाले भरे पड़े हैं दुनिया में। और आजकल तो इंडिया है ना भगवान फैक्ट्री हो गया, हर गली में भगवान पैदा हो रहा है, सबसे बड़ा बिना टैक्स फ्री बिजनेस है। और ऐसे मिथ्याचारी लोगों के पीछे जाकर लोग अपने आप को डुबो देते, क्योंकि ऐसे लोग हालांकि बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो भौतिक कर्मों में नहीं लगे रहते, बल्कि मन में ये भौतिक चीजों के प्रति इतनी आसक्ति और चिंतन चलता रहता है कि उसके कारण वे लोगों को आध्यात्मिक दे नहीं सकते ज्ञान। आपके पास जो है वही बांटोगे ना, जो है ही नहीं वो बांटोगे कैसे? बांट सकते हो? कोई रोडपति और करोड़पति जैसा बोलता जा रहा है, ये लो करके, हाथ में तो कुछ नहीं, क्या लेंगे लोग उससे? कुछ ले सकते हैं? और वही होते जा रहा है। आजकल अध्यात्म के नाम पर लोगों को फंसाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे मिथ्याचारी लोग जो हालांकि बाह्य रूप से अपने कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है लेकिन कर्म के बारे में चिंतन नहीं छोड़ता। कई कई बड़े महाराज जी उनके खुद के फैक्ट्रियां हैं। क्यों? क्योंकि मन में उन कर्मों के बारे में चिंतन चलता रहता है। और इसलिए भगवान बोलते हैं कि यस्त इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्ता से विशेषते। यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति से कृष्ण भावनामृत कार्य प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। लेकिन जो व्यक्ति सही रूप से आध्यात्मिक तत्वों को जानकर उनको अपने जीवन में ढाल लेता है और प्रयास करता है कि ये सारे कर्म उसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही हो, तो उसे सही कर्मयोग कहा गया। जैसे बहुत ही सामान्य चीज है, सामान्य तौर से हम समझने का प्रयास भी कर सकते हैं, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं हम? हमारा हर एक कार्य उस व्यक्ति के संतुष्ट करने के लिए करते हैं ना। हम काम क्यों कर रहे हैं? इतना अपना पूरा घर बार छोड़ के यहाँ पे आए, यहाँ पे इतना कष्ट कर रहे हैं, इतने गर्मी में काम कर रहे हैं, किस लिए? ताकि अपने परिवार के प्रति आसक्ति है और अपने कार्यों के द्वारा हम उनको प्रसन्न रखना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से जब कोई जीवात्मा सोचता है कि मेरे सारे कर्म मैं ऐसे करूं कि जिससे भगवान प्रसन्न हो और उस प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य हम करते हैं तो उस कार्य को कर्मयोग कहा गया है, तो फिर कोई भी हो आप जो कार्य कर रहे हैं अगर उसका केंद्र बिंदु अगर आप बनाते कि भाई मैं अभी ये जो कष्ट कर रहा हूं, कार्य कर रहा हूं, इसका जो भी परिणाम है ये मैं भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, तो वो कार्य कृष्ण भावना भावित हो जाता है। ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ दो और यहाँ पे आके बैठो सोलह माला जप करो, ये करे तो सबसे अच्छा है। देखिए सबसे होगा नहीं, होगा क्या, हफ्ते में एक घंटा यहाँ पे आके बैठने के लिए तंग हो जाते हैं। हर रोज जीवन में हर क्षण में ये करना इतना आसान नहीं है, तो कम से कम जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार तो हम करें। और जब ये करने की बुद्धि हमें आती है तो उसको कृष्ण कामना भावना भावित मति कहा गया है। और इस भावना से जो भी हम कार्य करते हैं वही असली कर्म ही होता है, और वही भगवान अर्जुन को यहाँ पे बताना चाहते हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के रह नहीं सकता, जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक कर्म करना ही है। अब ये बता दें कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो यह कर्मनः शरीर यत्रापि चते न प्रसिद्धिर अकर्मनः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, कर्म तो करना ही है, उसको त्याग नहीं सकते हम। क्योंकि यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त सिंह समाचार। भगवान यहां पर बताए कि अभी कैसा कर्म करो, यज्ञार्थ यानी श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः है कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। क्योंकि शास्त्र बताता है कि वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेन पर प्रमाण विष्णु आराध्यते कुंतः, कि जो भी हमें वर्ण और आश्रम के अनुसार जो हमारे लिए नियत कर्म है अगर वो हम कर्म करते रहते हैं तो उस कर्म की सिद्धता यह है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, और उनकी प्रसन्नता ही हमारे सुख का कारण है। सम सिद्धिर हरितोषणम, समसिद्धि या सिद्धता या परिपूर्णता किसी भी कार्य की वो है कि जिसके द्वारा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवित त्वमेश वो असत्वी अष्ट कामधु। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी श्री विष्णु ने स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों की रचना की और कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है एक जगह पे कि श्रेयापतिर यज्ञ प्रतिर प्रजापतिर ज्ञान प्रतिर लोक प्रतिर धरा प्रति प्रतिर गतिर शांतक वृष्णि सात्वताम प्रसिद्धताम मे भगवान सताम प्रति। कि सारे स्वामियों के स्वामी, सारे प्रजापतियों के पति, सारे लोकों के पति, अंधक और वृष्णि वंश के तथा सात्वता के जो पति है वे स्वयं भगवान श्री विष्णु है। अगर उनकी संतुष्टता हो जाए तो निश्चित रूप से सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं। अभी यज्ञ करने के लिए कहा तो अभी कलयुग के लिए क्या करें, फिर कौन सा यज्ञ करें, क्योंकि कलयुग में घी भी शुद्ध नहीं मिलता है, इसलिए वो डब्बे के ऊपर लिखना पड़ता है शुद्ध घी करके। अरे घी यानी शुद्ध दूध, दूध का दही, दही का छाछ, छाछ का मक्खन, और मक्खन का फिर घी बनता है, तो इससे शुद्ध और कुछ है, और फिर भी उसके ऊपर लिखना पड़ता है शुद्ध घी क्योंकि नहीं मिलता है। अरे घी नहीं मिलता है यज्ञ के लिए, तो यज्ञ क्या करोगे। इसलिए ये कलयुग की दुर्दशा देखकर भगवान ने पहले ही हमारे लिए सब अरेंजमेंट करके रखे, भैया आप लोग नालायक हो बाकी सब चीजें करने के लिए, तो आपके लिए मैंने सबसे आसान तरीका दिया, क्या करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे,
बस संकीर्तन यज्ञ करना। कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञे ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है। जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी इसकी संस्तुति की गई है। यज्ञ करने से क्या होता है, यहाँ पे बताते हैं कि देवान भावयतान एन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेयः परमम अवाप्य सत। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको प्रसंपन्नता प्राप्त होगी। सत्व शुद्धि आर शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो अथवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथी नाम विप्रमोक्ष। कहा जाता है कि यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। क्योंकि जैसा खाते हैं जैसा अन्न वैसा मन बनता है, जैसा मन वैसे विचार उत्पन्न होते हैं, जैसे विचार रहेंगे वैसा हमारा आचार रहता है। इसलिए बचपन में हम देखते हैं कि ज्यादा करके पहले के जमाने में, अभी तो नहीं, बच्चों को क्या करते थे, केवल घर में बनाई चीजें ही खिलाते थे क्योंकि घर में है माँ अपने प्रेम से इन सारे चीजों को बनाती थी तो प्रेम भी रहता था, प्रेम का संस्कार होता था उस अन्न के ऊपर और खाने वाले पे वही संस्कार रहता था। जब तक पेट में है वो सब चीजें तब तक उसकी भावना प्रेममय रहती थी, भावना शुद्ध रहती थी। आजकल लोग जानवर जैसा बिहेवियर क्यों करते हैं, जैसा खाता है वैसे ही करता है, जानवर जैसे ही खाता है तो जानवर जैसे ही करेगा। शास्त्र में कहा गया है कि सभ्य मनुष्य बैठ के भोजन करते हैं। आजकल लोग पैसा देके चौराहे पे खड़ा होके खाते हैं और समझते कि उसमें शान है, लेकिन शास्त्र खड़ा हुए होकर खाने वाले प्राणियों को क्या कहता है, जानवर। और आजकल उसमें ही लोग संपन्नता मानते हैं कि हम फास्ट फूड खाते हैं। क्या खाते हैं, फास्ट फूड, और बोलते जंक फूड। जंक यानी कचरा, कचरा फूड खाते हैं। ऐसा खाएंगे तो फिर मन क्या होगा, कचरा ही हो जाएगा ना, मन का कचरा होगा। या तो मंदिर में आ पाओगे, भगवान के बारे में कुछ सुनने की इच्छा होगी, बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, अगर आहार शुद्ध हो तो व्यक्ति शुद्ध बन सकता है। और सबसे शुद्ध आहार क्या है, भगवत प्रसाद, इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेनेव सा। अब चोरों की डेफिनेशन दी गई, व्याख्या दी गई, किसको चोर कहा जाता है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कितने चोर भरे हुए। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। बैठने तो एक ही जगह जहां पर आदमी सुख से सो सकता है, एक व्यापारी था बेचारा, बहुत दिन हो गए नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि धन इतना कमाया था मालूम नहीं कब टैक्स वाले आ जाएंगे और मंडी में बैठ जाएंगे। वो धन के बारे में सोच सोच कर बेचारे की नींद आराम हो गई थी। एक बार सारा धन पकड़ लिया, थैली में डाला और आ गया एक साधु के पास। साधु महात्मा बोला नींद नहीं आ रही है, क्या करो? बोले ठीक है, चिंता मत करो, पीछे जाके बैठ जाओ, दीवार पे सट के बैठ जाओ थोड़ा। बोले ठीक है, बैठ गया और महाराज ने कथा चालू कर दी। कथा शुरू हो गई और अचानक हेलीकॉप्टर का आवाज आना चालू हो गया। लोग डर गए, बोले ये क्या हो गया, ये कहाँ से? देखते तो पीछे अपने हमारे व्यापारी महाशय पूरी दुनिया से परे हो गए थे, कोई उठाने गया था। बोले चिंता मत करो, पहली बार सो रहा है जीवन में, बेचारा सोने को। कम से कम एक फायदा तो होता है भगवत कथा में आने का, नींद अच्छी आ जाती है। कहीं नहीं तो कम से कम कथा में बैठने के बाद तो नींद आती है, क्योंकि मन हल्का हो जाता है ना, दिमाग में कुछ रहता नहीं है, खाली हो जाता है। चोरों के बारे में बोल रहे थे, चोर वो है जो अपने किए हुए कर्म को भगवान को या देवताओं को अर्पण नहीं करता। तो उस कंपेयर से हम देखे तो सब चोर ही है ना, कौन किसको शिक्षा करेगा फिर? क्योंकि इस जगत में जो पैदा हुए साले सब चोर है, क्योंकि इस जगत को दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग यानी कैद खाना, तो भला कोई यहाँ पे आता ही नहीं है। भले व्यक्ति आते केवल देख के चले जाते हैं, बोले चलो, जैसे जेल में कभी कभी जेलर भी एक राउंड मारता है, तो ऐसा नहीं कि वो कैदी है। वैसे भगवान के भक्त आते कभी कभी राउंड मार के जाते हैं, बोलते कोई ठीक अच्छा ढंग का दिखाई दे तो बोलो चलो इसको माफ करो, लेके चलो बोलते। तो ये इस भौतिक जगत से अगर बाहर निकलना है तो बहुत आवश्यक है। अब प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जा सकती है, कोई कुछ बना नहीं सकता। जैसे कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं भगवान के पास क्या जाते हो, हम देंगे आपको, इनके बाप की फैक्ट्री लगी है क्या जो ये देंगे आपको? ब्रेड देंगे, लेकिन ब्रेड बनाने के लिए गेहूं कौन देगा? जब आपने कारखाना खोला है तो कारखाने में से गेहूं निकलेगा, कौन देगा गेहूं? ये लोग मानते नहीं है, लेकिन अपनी ही बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि आपकी हर एक आवश्यकता केवल भगवान या उनके जो प्रतिनिधि है वही दे सकते हैं, अन्य कोई नहीं दे सकता। और इसीलिए बोलते हैं कि मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले, इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न फल शाक दूध चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांसाहारी, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लिए, ऊष्मा प्रकाश जल वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, न वर्षा या प्रातःकालीन ठंडी हवा, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिक अधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जा सकते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।